नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार ने सीएम श्री स्कूल के आधुनिकीकरण के लिए 265 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने गोल्फ लिंक कॉलोनी को अनुपम कॉलोनी घोषित किया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में आयोजित। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया 30 जून से शुरू और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने डिजिटल अरेस्ट ठगी मामले में राजधानी दिल्ली और कई राज्यों में अभियान चलाया, 2 गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि राजधानी के 75 सीएम श्री स्कूलों को आधुनिक और छात्र केंद्रित सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके लिए व्यय वित्त समिति ईएफसी ने लगभग 265 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस पहल के अंतर्गत स्कूलों में आधुनिक प्रवेश द्वार, स्मार्ट आधारभूत ढांचा, पेयजल, स्वच्छता सुविधाएं और खेल मैदानों का विकास पर विशेष बल दिया जाएगा। इसके अलावा विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी निगरानी, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था और कंप्यूटर लैब तथा मल्टीपर्पज हॉल का उन्नयन भी किया जाएगा। साथ ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए रैंप, टेक्सटाइल पाथ और अन्य दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी, ताकि सभी विद्यार्थियों को समान अवसर और बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य केवल विद्यालयों भवनों की मरम्मत कराना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को सुरक्षित, स्वच्छ, समावेशी और प्रेरणादायक शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराना है। परियोजना के सभी कार्य अगले वर्ष के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सकलैन अख्तर।
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद एनडीएमसी ने राष्ट्रीय राजधानी में गोल्फ लिंक कॉलोनी को अनुपम कॉलोनी घोषित कर दिया है। मीडिया से बातचीत में आज एनडीएमसी के अध्यक्ष केशव चंद्र ने कहा कि एनडीएमसी की नवी अनुपम कॉलोनी है।
ये नवी कॉलोनी है जो हमें अनुपम कॉलोनी में की उपाधि देने में हमें अत्यंत गर्व महसूस हो रहा है। नवी कॉलोनी में पहली कॉलोनी जिसने अपना काम सामने रख दिया है कि और किसी को कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। जो कंपोस्ट है वहाँ पे ऑलरेडी बन रहा है और यहाँ का एक तिनका भी बाहर नहीं जाता है। यहाँ पे इतना भी कूड़ा निकलता है वो या तो कंपोस्ट होता है या फिर उसको सेग्रीगेट करके ये जो सामने वाले बिन देख रहे हैं इन सबों में जाता है, जिसको फिर से रिसाइकिल किया जाता है।
गोल्फ लिंक कॉलोनी में कचरे का निपटान स्थानीय स्तर पर ही किया जाता है और ये उपलब्धि परिषद और स्थानीय निवासियों के सहयोग से हासिल की गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज पूर्वी दिल्ली स्थित संजय झील का दौरा कर विकास कार्यों की समीक्षा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने बताया कि इस दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने उन्हें 52 एकड़ में फैले जलाशय और इसके आसपास के 165 एकड़ संरक्षित वन क्षेत्र के पुनर्जीवन के लिए तैयार कार्य योजनाओं की जानकारी दी। दिल्ली में कोचिंग संस्थानों के लिए नियामक ढांचा तैयार करने और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने की दिशा में दिल्ली सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है। मीडिया से बातचीत में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि न्यायमूर्ति गाबा समिति की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली सरकार ने तकनीकी शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो कोचिंग संस्थानों के लिए नियम और कानूनी ढांचा तैयार कर रही है। दिल्ली के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह आज दिल्ली सचिवालय में आयोजित राज्य डेटा के लिए साइबर सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ बनाने के विषय पर राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला में शामिल हुए। यह कार्यक्रम दिल्ली सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा भारत सरकार के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग के सहयोग से आयोजित किया था। इस अवसर पर डॉ सिंह ने तेजी से बदलते साइबर खतरे के परिदृश्य के बीच सरकारी डेटा, डिजिटल अवसंरचना और नागरिक सेवाओं की सुरक्षा में साइबर सुरक्षा की बढ़ती जरूरत पर विशेष जोर दिया।
साइबर सिक्योरिटी को लेकर सरकार पूरा काम कर रही थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सक्सेस के पर और दिल्ली सरकार भी इस पर काफी एक्टिव रोल से काम कर रही है। हमारी आईटी डिपार्टमेंट भी जो इंटैक्ट होकर साइबर के जो हैकर्स होते हैं, देखिए साइबर का कोई बाउंड्री नहीं है, कहीं से भी हैक कर सकते हैं, उससे कैसे अपनी डाटा को सिक्योरिटी में रखा जा सके उसके सारे कंसर्न टीम आ रखे हैं।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सभी जिलाधिकारियों के साथ प्रदूषण नियंत्रण को लेकर आज एक समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रदूषण हॉटस्पॉट्स की पहचान, धूल प्रदूषण नियंत्रण, यातायात प्रबंधन, अतिक्रमण हटाने, सार्वजनिक पार्कों के रखरखाव तथा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विरुद्ध कार्रवाई जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। भारत हरियाणा के गुरुग्राम में 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों, उपमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में प्रमुख वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। बैठक में विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ऊर्जा आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए मूलभूत है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व में बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बनकर उभरा है।
फ्यूचर एनर्जी सिस्टम्स मस्ट बैलेंस,
भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों में स्थिरता और विश्वसनीयता के बीच संतुलन होना चाहिए। भारत ऊर्जा क्षेत्र की पूरी श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। अब तक 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह बदलाव और बड़े स्तर पर जारी रहेगा।
ट्रांसफॉर्मेशन विल कंटिन्यू एट स्केल।
ब्रिक्स के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कल तक जारी रहेगी। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि अभियान का उद्देश्य सभी पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना और अपात्र व्यक्तियों को बाहर रखना है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र 6 के तहत पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र समेत 16 राज्यों में 80 से ज्यादा जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। सीबीआई के अनुसार ये कार्रवाई देशभर में डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी 200 से अधिक ठगी की घटनाओं की जांच के तहत की गई। गिरफ्तार आरोपी फर्जी कंपनियां बनाने और बैंक खाते संचालित करने में शामिल थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने शराब तस्करी मामले में दुर्गापुरी एक्सटेंशन से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से 600 क्वार्टर शराब की बोतलें और अपराध में इस्तेमाल वाहन को बरामद किया। एक अन्य मामले में पुलिस ने नजफगढ़ क्षेत्र से एक आरोपी को 500 क्वार्टर शराब के साथ गिरफ्तार किया। आगे की जांच जारी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। आज संविधान हत्या दिवस है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद हमें दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां भी उन्होंने पढ़ी।
जब आपातकाल को 1 वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी थी, और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
सीख चो में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, एक बरस बीत गया।
संविधान हत्या दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि 25 जून 1975 की वो रात भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि आपातकाल लोकतंत्र और संविधान पर सबसे बड़ा आघात था। भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आपातकाल के दौरान न्यायपालिका पर दबाव डाला गया और मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित हुई।
जुडिशरी के खिलाफ बेशर्मी, संपादक पत्रकारिता के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव, विपक्षियों को जेल में बंद करना और गलत तरीके से इमरजेंसी लगाना। मैं इमरजेंसी के अंडरग्राउंड में प्रधानमंत्री की भूमिका की तारीफ करूंगा। सरदार के रूप में जितना अंडरग्राउंड को उन्होंने गुजरात से लेकर उत्तर भारत को जो संगठित किया था वो कमाल था। और आज अपने ट्वीट में उन्होंने उस काले अध्याय को याद किया है कि देश की जनता ने कितनी हिम्मत दिखाई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेजन के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि यह भारत में निवेश करने के लिए दुनिया भर में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन अब राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से अगले महीने की 10 तारीख तक किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हर साल उन शिक्षकों को दिए जाते हैं जिन्होंने स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, नवाचार और समर्पण का परिचय दिया। इसका उद्देश्य शिक्षकों के योगदान को सम्मानित और प्रोत्साहित करना है। निर्जला एकादशी के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार में मंत्रियों ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि निर्जला एकादशी आस्था, संयम और सेवा का एक पावन पर्व है। उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु से सभी के जीवन में सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि बनाए रखने की प्रार्थना की है। अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई दिवस के उपलक्ष्य में आज नई दिल्ली के कर्नेल सिंह स्टेडियम में एमएसएमई प्राइड वॉकथन 2026 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आईआईए दिल्ली ने भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस के सहयोग से किया। कार्यक्रम का विषय गुणवत्ता, नवाचार, उद्यमिता और रोजगार के लिए साथ साथ चलें था। इस अवसर पर आईआईए दिल्ली की अध्यक्ष डॉक्टर ममता मई प्रियदर्शिनी ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र राष्ट्र निर्माण का मजबूत स्तंभ है और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने की ऊर्जा की उपलब्धता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय तेज धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार कल का अधिकतम तापमान 39-41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25-27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने सीएम श्री स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए 265 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने गोल्फ लिंक कॉलोनी को अनुपम कॉलोनी घोषित किया है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में आयोजित। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया 30 जून से शुरू और सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी मामले में राजधानी दिल्ली और कई राज्यों में अभियान चलाया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।